सुबह की धूप ने राजवंशी हवेली के ऊंचे खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया था। रात का भारीपन धीरे धीरे उतर रहा था, मगर घर के हर कोने में एक अनकहा तनाव अब भी तैर रहा था। ड्राइंग रूम में वही माथुर दंपति बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी आंखों में पिछली रात की असुविधा की झलक बाकी थी, मगर राजवंशी परिवार ने उन्हें रोककर जैसे तैसे माहौल संभाल लिया था। अर्जुन वहां मौजूद था और यशवर्धन भी। दोनों के चेहरे पर संयम और सतर्कता की परतें थीं। माँ लगातार मुस्कान बनाए हुए उनसे घरेलू बातें कर रही थीं। तभी कमरे में अखिल आया। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में थकान और चेहरे पर ग्लानि का बोझ। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। वो सीधा माथुर दंपति की ओर बढ़ा। एक पल के लिए सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सर, मैम, अखिल ने धीमे स्वर में कहा, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आप दोनों को आहत नहीं करना चाहता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सर माथुर ने एक नज़र अपनी पत्नी की ओर डाली और फिर अखिल की ओर देखा। उनके स्वर में ठंडापन था, मगर शब्द सैयद थे। ठीक है अखिल, हमें उम्मीद है कि आगे ऐसी बात दोबारा नहीं होगी। उनकी पत्नी ने हल्का सा सिर हिलाया। हम यहाँ दोस्ती और काम के रिश्ते को आगे बढ़ाने आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझदारी दिखाएंगे। अखिल ने सिर झुका लिया। मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी। यशवर्धन ने माथुर दंपति को आश्वस्त नज़र से देखा। माँ ने विषय बदलते हुए बातचीत को चाय और नाश्ते की तरफ मोड़ दिया। मामला सतही तौर पर वहीं थम गया, लेकिन सतह के नीचे कई धाराएं थीं जिन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। रहना सीढ़ियों के पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी तल्लीनता थी। तो अखिल ने सफाई देकर बात खत्म कर दी, लेकिन मेरे लिए ये अंत नहीं, शुरुआत है। जब एक दरार पड़ चुकी है उसे और चौड़ा करना आसान होता है। उसने धीरे से अपने दुपट्टे को कंधे पर ठीक की और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। ऊपर के हिस्से में एक कमरे में अनन्या अपनी माँ के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे वापस हॉस्टल जाना है, मुझे ये घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ चौंक कर उसकी ओर मुड़ी। अनन्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें आए। अनन्या ने झुंझला कर कहा, मुझे पसंद नहीं है यहाँ, ये दिखावा, ये बनावटीपन सब घुटन देता है, हर किसी के चेहरे पर नकाब है, मुझे इसमें शामिल नहीं होना। माँ ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में समझाया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भाई अखिल के कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया। वो चाहता था कि जब माथुर परिवार हमारे साथ समय बिताएं तो वे देख सकें कि हमारा परिवार कितना मजबूत और जुड़ा हुआ है। अनन्या ने आंखें चौड़ी की। मजबूत, जुड़ा हुआ? माँ, आप सच में ऐसा सोचती हैं? कल रात आपने खुद नहीं देखा कि अखिल भैया ने क्या तमाशा किया, यही है जुड़ाव? माँ के चेहरे पर असहजता झलक गई, उनकी आंखों में डर उतर आया। बेटी, तुम्हें समझना होगा, इन रिश्तों और समझौतों के बिना हमारा घर, हमारी इज्जत सब अधूरा है। जब तक माथुर परिवार यहाँ है तुम्हें यहीं रहना होगा, उसके बाद तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। अनन्या का चेहरा और लाल हो गया, उसने होंठ फींच लिए। तो इसका मतलब आपको मेरी मर्जी से ज्यादा इस घर की इज्जत मायने रखती है? माँ ने धीरे से कहा। इज्जत ही तो सब कुछ है अनन्या। अनन्या की आंखों में आंसू उभर आए, मगर उसने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। वो पलटा और तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने माँ की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी की मिलीजुली छवि थी। ठीक है माँ, जब तक आप चाहेंगी मैं रहूंगी, लेकिन दिल से मैं यहाँ नहीं हूँ। वो झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। माँ वहीं खड़ी रह गई, सिर झुकाकर। उनके चेहरे पर थकान और डर दोनों उभर आए थे। अनन्या अभी कमरे से बाहर निकली ही थी कि सामने से शालिनी आती दिखी। उसके चेहरे पर सधी हुई मुस्कान थी, मगर आंखों में सवाल छुपे थे। क्या हुआ अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनन्या ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके होंठ कांप गए। उसने नजरें चुरा ली और आगे बढ़ गई। शालिनी दरवाजे की ओर बढ़ी, जहां माँ अब भी खड़ी थी। कमरे का माहौल अचानक और भी भारी हो गया।